ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में विशेष भट्टी करने का चांस मिला है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और देखो हमारे ज्ञान सरोवर निवासी ने कैसा वतन बना दिया है, स्टेज को भी, साथ ही साथ विशेष कमेंट्री के साथ आप सभी योग करते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है। सुबह शाम दोनों टाइम आपको विशेष कमेंट्री के साथ योग अभ्यास करने को मिल रहा है, तो इसीलिए एक यूनिक एक्सपीरियंस अपने साथ यहां से लेकर के जाएंगे। और उसमें आज का जो विषय रखा है, एकांत, एकाग्रता और एकव्रता, क्योंकि हम सभी ब्राह्मणों का लक्ष्य यही रहता है कि हमारा मन सहजता से एकाग्र हो जाए। ये नहीं कि नहीं होता है, होता है, लेकिन कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप से। और विशेषकर जब कोई ऐसी जीवन में बात आ जाए, घटना हो जाए, उस समय जो हलचल अंदर आ जाती है, तो ऐसे समय पर एकाग्रता हमारी बनी रहे, उसके लिए विशेष अभ्यास अगर किया हुआ होता है तो वो सहज अनुभव कर पाते हैं। एकांत, एकाग्रता और एकव्रता, अगर हम अपने मन के अंदर एक चित्र ले आए एक योगी का, जो योग साधना में लवलीन अवस्था में बैठा है, तो कितने प्रकार की एकाग्रता नजर आती है, क्या कहेंगे, कितने प्रकार की एकाग्रता उस योगी की लवलीन अवस्था में आपको दिखाई देती है, क्या कहेंगे। हाँ, तन की एकाग्रता और मन की एकाग्रता, और वही मन की एकाग्रता, संकल्पों की कहो, मन की कहो, और स्थिरता दिखाई देती है, एक रस दिखाई देती है, एक निष्ठा दिखाई देती है। पांच प्रकार की एकाग्रता उस चित्र से हमारे सामने स्पष्ट होती है। सबसे पहली एकाग्रता जो हमें दिखाई देती है उसकी शारीरिक एकाग्रता। दूसरी एकाग्रता जो नजर आती है वो है मानसिक एकाग्रता। तीसरे प्रकार की एकाग्रता है बौद्धिक एकाग्रता, क्योंकि योग को कहा ही जाता है बुद्धि योग, तो बौद्धिक एकाग्रता। चौथी एकाग्रता वो है भावनात्मक एकाग्रता, और पांचवी एकाग्रता है स्मृतियात्मक एकाग्रता अर्थात कॉन्शियसनेस। इतना एक रस एक निष्ठ जो आपने कहा, तो ये पांच प्रकार की एकाग्रता उस चित्र से नजर आती है। उसमें जब हम कहते हैं कि शारीरिक एकाग्रता, तो शारीरिक एकाग्रता के लिए यही स्पष्ट होता है कि कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को जब राजयोग सिखाते हैं, प्रतिदिन मुरली के अंदर आता है मैं तुम्हें राजयोग सिखाने आया हूं, अर्थात के कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार। आज दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो लोगों के जीवन में एकाग्रता इसी लिए नहीं है, या ये एकाग्रता का अभाव इसीलिए है क्योंकि इनकी इंद्रियां इतनी चंचल है। और उसमें भी जैसे बाबा हमेशा मुरली में हम बच्चों को कहते हैं कि सबसे ज्यादा चंचल है या आंखें, आंखों की चंचलता, हाथ की चंचलता, ये सब उनके मन को एकाग्र नहीं होने देता है। तो इसीलिए योगी माना ही जिसकी शारीरिक स्थिरता लाने के लिए कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार। कर्मेंद्रिय की चंचलता जहां समाप्त हो जाए वहीं से एकाग्रता आरंभ होती है। आज एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर अपने पढ़ाई पर मन एकाग्र करना चाहता है लेकिन अगर उसमें चंचलता रहती है तो क्या होगा? कई बार कई लोगों को हम देखते हैं बैठे हैं लेकिन हाथ हिलते ही रहते हैं। बताता है क्योंकि फिजिकल सेंसेस का कनेक्शन इतना गहरा है मन के साथ भी कि मन की स्थिरता को लाने नहीं देता है। इसीलिए जैसे भगवत गीता के अंदर भी भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि हे अर्जुन अपनी कर्मेंद्रिय को जीतो, एकाग्रता का को साधने के लिए, एकाग्रता के अभ्यासी अगर बनना है मुझे, क्योंकि तब वहां से योग आरंभ होता है। अगर शारीरिक एकाग्रता न हो, इंद्रियों की चंचलता होगी तो योग को कभी साध नहीं सकता है व्यक्ति। और इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये योग सिखाया ही है कि बच्चे खुली आंख से योग करो, चलते फिरते योग करो। क्यों ये सिखाया? ताकि हम अपनी कर्मेंद्रिय और उसमें भी विशेष आंखों को साध सके। लोगों को यही तो डिफिकल्ट लगता है कि आंख बंद करके हम फिर भी योग लगा सकते हैं लेकिन खुली आंख से योग कैसे लगा सकते हैं? बहुत सारी चीजें दिखाई देती है और ये हमारे मन को स्थिर होने नहीं देती है। लेकिन बाबा ने बताया कि लवलीन अवस्था के लिए जितनी खुली आंख से योग की एकाग्रता हम डेवलप कर सकते हैं उतनी बंद आंख से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बंद आंख होते ही हमारा अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार समाप्त हो जाता है। और इसलिए व्यक्ति समझता है अंदर में कि मेरा मन एकाग्र तभी होता है जब आंखें बंद होती है, लेकिन वो मन की आंखों से सारी दुनिया घूम के आ सकता है, सारी दुनिया को देख सकता है, तो एकाग्रता नहीं होती है। और इसीलिए शास्त्र में ये बात आती है कि जब अर्जुन को पूछा उसके गुरु ने कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, वैसे सारे जितने भी शिष्य थे उस गुरु के, द्रोणाचार्य के, हर एक ने कहा हमें आकाश भी दिखाई देते, बादल भी दिखाई देते, झाड़ भी दिखाई देता, डाली भी दिखाई देती, चिड़िया भी दिखाई देती। तो कहा साइड हो जाओ, तेरी एकाग्रता ही नहीं है, तू कहां तीर चलाएगा। और लास्ट में जब अर्जुन को पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो कहा मुझे आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, चिड़िया की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है। भावार्थ ये कि खुली आंख से ही एकाग्रता, जब ये आंखों को साध लेता है इंसान, वहां से एकाग्रता आरंभ होती है। जब तक ये आंखों की चंचलता है, वहां एकाग्रता कभी नहीं आ सकती है। इसीलिए बाबा ने हमें अभ्यास ही करा, बच्चे खुली आंख से एकाग्रता के अभ्यासी बनो, कि आपको बाबा बिंदु के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। तो शारीरिक एकाग्रता अर्थात कर्मेंद्रिय की चंचलता समाप्त और कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार, तभी हम मानसिक एकाग्रता अपनी डेवलप कर सकते हैं। मानसिक एकाग्रता जो अक्सर मनुष्य की एक शिकायत रहती है, मन बहुत भटकता है। कहां भटकता है, मन कहां जाता है? मन हमेशा तीन बातों में भटकता है। पहला, मन हमेशा व्यर्थ में जाता है, व्यर्थ चिंतन, कुछ भी सोचता रहता है, मतलब का हो या ना हो उसको सोचना है, उसकी आदत पड़ी हुई है। तो या तो व्यर्थ में भटकता है, दूसरा या तो संबंधों में भटकता है, फलाने की याद आ गई, उसकी याद आ गई, कोई ना कोई संबंध अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति की याद आ जाती है। और तीसरा, इच्छाओं के पीछे जाता है मन, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सारे दिन चाहिए चाहिए कि चाहना में मन भटकता है। तो मन के भटकने के ये तीन द्वार है, व्यर्थ, संबंध या चाहिए चाहिए कि चाहना। इसीलिए मन मनुष्य का एकाग्र नहीं हो सकता, या मन मनाभाव स्थिति हमारी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे सर्व संबंध एक बाबा के साथ जोड़ लो, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हो, और वो भी एकदम निकट वाला संबंध, जहां मन जा सकता है वो संबंध बाबा के साथ जोड़ लो। अगर संबंधों को ही याद करने के अभ्यासी है तो सर्व संबंध बाबा से जोड़ लो, और उस रूप में बाबा को याद करो। दूसरी बात कि जहां बाबा है बाबा ही हमारा संसार हो जाए तो इस दुनिया में क्या चाहिए? जहां बाबा हम बच्चों को पूरे ब्रह्मांड का, विश्व का मालिक बना देता है, तो ऐसी आत्मा का क्या चाहिए फिर और आगे? तो ये छोटी छोटी चाहनाएं जो है, चाहिए चाहिए वाली, वो भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सर्व प्राप्तियां बाबा से ही हो जाती है। प्रैक्टिकल सभी ने अनुभव किया होगा, जीवन में अगर कुछ चाहिए भी होता है, कोई चाहना भी होती है, और दिल से जब वो बात बाबा के सामने रखते हैं, वो चाहना पूरी होती है कि नहीं होती है? स्थूल की चाहना भी बाबा पूरी कर देता है, लेकिन बाबा से कह करके तो देखो, खाली मन को उस चाहिए चाहिए में भटकाते रहने से तो पूरी नहीं होंगी। सर्व प्राप्ति कराने वाला ही बाबा है, और इसीलिए अगर संकल्प बाबा के सामने रखते हैं तो बाबा आप ही उसको पूरा करा ही देते हैं। और तीसरा जो कहते हैं व्यर्थ में भटकता है, तो बाबा ने हमें इतने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है जो व्यर्थ की मार्जिन ही नहीं, क्योंकि जितना व्यर्थ होगा उतने मन की शक्ति की लीकेज होगी, और जहां मन की शक्ति की लीकेज है तो मानसिक एकाग्रता हम अपनी डेवलप नहीं कर सकते हैं। शक्ति चाहिए मन को कंट्रोल करने के लिए, और उसके लिए चाहिए समर्थी। तो इसीलिए जब समर्थ संकल्प बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं, ज्ञान का इतना खजाना दिया है, संडे की मुरली हम सभी ने सुनी कि जिसमें बाबा ने कहा कि दुनिया में लोगों का मन जाता भी है तो भौतिकता के पीछे जाता है या व्यक्ति के पीछे जाता है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने अनुभव कर लिया कि स्वार्थ के बिना और कुछ नहीं है, निस्वार्थता है ही नहीं। और इसीलिए जब यहां देखते हैं इतनी शुभ भावना, शुभ कामना, तो कहते इस दुनिया में आप कैसे रह सकते हैं इतनी शुभ भावना, शुभ कामना के को लेकर के। तो इसीलिए समर्थ संकल्प, क्योंकि शुभ भावना के लिए शुभ चिंतन चाहिए, और शुभ चिंतन का खजाना है ज्ञान, ज्ञान ही संपूर्ण खजाना है। तो इतनी समर्थी बाबा ने हम बच्चों को प्रदान किया है। तो मन की एकाग्रता को ले आने के लिए इन तीनों को जब समझ लिया, फिर उसके बाद तीन चीजों में बांधना जरूरी है। और वो तीन चीजें कौन सी जिसमें बांधना है? लक्ष्य, लक्षण और लक्ष्मण रेखा। मन को लक्ष्य दे दो, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सी स्थिति बनानी चाहते हैं, फरिश्ता स्थिति। जैसे अगर मान लो कि आज हमने लक्ष्य ले लिया, सुबह सुबह रोज स्वमान हमें मिल जाता है, यानी एक लक्ष्य मिल गया कि आज सारा दिन मुझे इस लक्ष्य के ऊपर फोकस रहना है। तो लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, फिर उस अनुसार लक्षण, कि आज अगर मुझे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो उसके लक्षण लाइटनेस, हल्कापन, उस हिसाब से लाइटनेस के साथ साथ और क्या चाहिए? लाइटनेस के साथ साथ बुद्धि हल्की चाहिए, उपराम चाहिए, उपरामता। जितनी अंदर लाइटनेस होगी, उपरामता होगी, है ना, डबल लाइट स्थिति का अनुभव, लाइट माइट स्वयं को समझेंगे, तो ये लक्ष्य के साथ साथ लक्षण, और उस लक्षण को जैसे जैसे अंदर में धारण करेंगे तो उस लक्ष्य तक पहुंचना, उसका अनुभव करना सहज हो जाएगा। इसलिए लक्ष्य स्पष्ट होगा तो लक्षण सहजता से आ जाएंगे, और फिर उसके लिए लक्ष्मण रेखा, इससे बाहर नहीं जाना है। जैसे सीता जी के सामने लक्ष्मण रेखा खींच दिया, इससे बाहर नहीं निकलना, नहीं तो रावण जरूर ले जाएगा। ठीक इसी तरह मुझे भी अपने मन को उस लक्ष्मण रेखा में डालना है कि आज अगर मुझे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, पहले के जमाने में आपने सुना होगा दादियों के मुख से, कई साकार बाबा के समय जो भाई बहने होते थे अक्सर अपने अनुभव में सुनाते थे, पता नहीं आप लोग ने सुना होगा नहीं सुना होगा, लेकिन जब हमारी बठियां होती थी तो हमें जरूर बताते थे कि बठियां होती थी, हमें जब स्वमान मिलता था कि आज फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है, सारा दिन लक्ष्य मिल जाता था, तो कहते बाबा मम्मा के समय, दादी दीदियों के समय जो है उस दिन खाना भी सब कुछ व्हाइट मिलेगा, हल्का मिलेगा, कोई भारी चीज खाने के लिए नहीं दी जाती थी, तला हुआ हैवी खाना नहीं मिलता था, एकदम लाइट लाइट भोजन, ताकि अमृत वेले भी सहजता से उठ सके और सहजता से आप हल्के होकर के बैठ सके, सारा दिन भी शरीर लाइटनेस का अनुभव करे, तो भोजन भी इस तरह से होता था। कभी देखो तो सारी पीली चीजें मिलेगी, कभी देखो तो सारी एकदम व्हाइट चीजें देते थे खाने के लिए भी, हल्का एकदम भोजन। तो दादियां हमेशा ये बात सुनाती थी कि जिस दिन का जो स्वमान होता था वैसा ही हमें भोजन भी प्राप्त होता था। तो लक्ष्मण रेखा स्थूल भोजन से लेकर के और सब बातों का एक लक्ष्मण रेखा, कि आज मुझे कोई भी व्यर्थ चिंतन में अपने मन को नहीं ले जाना है। आज जैसे साकार मुरली में सुबह में 5 बातें चेकिंग करने के लिए बाबा ने कही, है ना, ये लक्ष्मण रेखा बाबा ने खींच लिया, और ये लक्ष्मण रेखा जैसे ही हम अपने मन को दे देते हैं तब मन की एकाग्रता, मन फिर धीरे धीरे उस अनुसार चलने लगता है। तो शारीरिक एकाग्रता के लिए कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार, और जैसे ही कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार आ गया और फिर मन को ये 3 चीजों में हमने बांधा, लक्ष्य लक्षण और लक्ष्मण रेखा, और 3 चीजें जो मन को भटकने की एक आदत थी उसमें हमने सर्व संबंध बाबा से, सर्व प्राप्ति बाबा से और समर्थी उसको प्रदान कर दी, फिर देखो मानसिक एकाग्रता हमारी सहज आने लगती है। तीसरी एकाग्रता बौद्धिक एकाग्रता। बुद्धि के लिए हमेशा बाबा कहते हैं प्रीत बुद्धि, निश्चय बुद्धि, कितना है हम, साथ ही साथ दादी जानकी हमेशा ये बात कहती थी बुद्धि के लिए क्लीन क्लियर एंड प्योर, क्लीन क्लियर एंड प्योर। जितनी हमारी बुद्धि की स्वच्छता होगी, क्लीन होगी, प्लेन बुद्धि जिसको बाबा हमेशा कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि ना हो। दुनिया के अंदर लोगों की इतनी कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि हो गई है, जो सिंपल बात को समझना उनकी क्षमता के बाहर हो गया है। सिंपल बातें समझ में नहीं आती है, कॉम्प्लिकेटेड बातें उलझाने वाले बुद्धि, खुद भी उलझे रहेंगे, दूसरों को भी उलझाते रहेंगे। अब ऐसी उलझन वाली बुद्धि होंगी वो कभी एकाग्र होगी? और योग में तो मन और बुद्धि दोनों की एकाग्रता चाहिए। तो चलो एकाग्र हो जाते हैं। तो इसीलिए जब कॉम्प्लिकेटेड बुद्धि होती है तो सिंपल बातों को समझना बहुत मुश्किल है। और बाबा ने बुद्धिवानों की बुद्धि इतनी ऊंची बातें भी इतने सरल शब्द में हमें समझा दिया, इतनी सहजता से समझा दिया कि अनपढ़ से अनपढ़ कोई गांव का भी व्यक्ति होगा उसको भी समझ आ जाती है। मुझे याद आता है कि जब यहां अब्दुल कलाम जी अपने और साइंटिस्टों को लेकर के आए थे, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति और ऐसे कई साइंटिस्ट जो डीआरडीओ के पहुंचे थे, तो एक क्षण ऐसा आया जब एक पब्लिक गैदरिंग में, यहाँ कोई प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में उनको स्टेज पर बिठाया और उनको बोलना था। तो जब लोगों को देखा उन्होंने, तो बाद में आकर के बाहर पूछते हैं, इतनी ऊंची बातें आप लोग बताते हो, इन लोगों की समझ में कैसे आता होगा? मैंने कहा आप किसी से भी सवाल पूछो, चाहे आत्मा को लेकर, परमात्मा को लेकर, सब इतने सक्षम है आपको जवाब देने के लिए। चाहे अनपढ़ से अनपढ़ क्यों नहीं होगा, वो भी आपको जवाब दे देगा। इतनी ऊंची बातें कैसे समझते होंगे? क्योंकि वो इतने अभ्यासी हो गए हैं कॉम्प्लिकेटेड बातें सोचने के, कि इतनी सिंपल बातें भी उनको लगता है ये बात ये लोग कैसे समझते होंगे। और इसीलिए कहा कि बाबा ने हमारी बुद्धि को इतनी क्लीन क्लियर कर दिया और प्योर बना दिया, तो ऊंचे से ऊंची बात जो ये आंखें नहीं देख सकती है वो बात भी समझने की क्षमता हमारी बुद्धि रखती है। तीनों कालों को, तीनों लोकों को समझने की क्षमता रखती है। दुनिया के लोगों की बुद्धि इतनी उलझनों से भरी हुई है, उसको सुलझाए कौन? बाबा का ज्ञान ही सुलझा सकता है। और इसीलिए जब उलझनों वाली बुद्धि रहती है तो डिस्ट्रक्टिव बुद्धि बन जाती है, तोड़फोड़ वाली बुद्धि बन जाती है। और जितनी हमारी बुद्धि सुलझी हुई होती है उतनी कंस्ट्रक्टिव बुद्धि बन जाती है। इसीलिए दुनिया के बुद्धि को अगर कहा जाए तो वो कैंची का काम करती है, और हमारी बुद्धि का काम जो है सुई धागा वाला, सिलने का काम करते हैं, काटने का काम नहीं करते हैं। जितनी हमारी बुद्धि सुई धागा वाली कंस्ट्रक्टिव होती है उतनी बुद्धि शांत और एकाग्रता सहज हासिल कर सकती है। जितनी उलझनों में रहते हैं डिस्ट्रक्टिव बुद्धि होती है वो कभी एकाग्रता को हासिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कहा निश्चय बुद्धि, बाबा ने हम बच्चों को यही स्पष्ट किया कि निश्चय किन किन बातों में चाहिए, चारों प्रकार के निश्चय का फाउंडेशन हमारा मजबूत कर दिया, क्योंकि माया आती ही है पहले निश्चय को हिलाने के लिए, और उसी से बुद्धि हिल जाती है। इसीलिए निश्चय के फाउंडेशन को पक्का किया, स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में और परिवार में। परिवार कैसा भी है तो मेरा परिवार। तो कोई भी परिवार के सदस्य के लिए न मुझे परचिंतन करना है न प्रदर्शन करना, जो है जैसे है वैसे, बाबा के हैं हमारे हैं, एक ही परिवार के हम हैं। जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, जितनी एक्सेप्टेंस पावर है उतनी बुद्धि की एकाग्रता सहज है। दुनिया में एक परिवार में चार मेंबर भी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बुद्धि जैसे उनको स्वीकारती नहीं है, हर वक्त कमी देखने के अभ्यासी हो गए, इसमें ये कमी है, ऐसा करते ये वैसा करते, ये होता है। कई बार कई लोग हमारे पास आते हैं ना, परिवार के लोग ये करते हैं ऐसा करते हैं, माना एक्सेप्टेंस नहीं है। मेरा परिवार है ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है। पति पत्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, पत्नी पति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उलझी हुई बुद्धि रहती है। इसलिए न बुद्धि शांत होती है न एकाग्र होती है। और अगर निश्चय बुद्धि है, मन स्वीकार कर लिया, ड्रामा की हर सीन को हमने एक्सेप्ट कर लिया निश्चय बुद्धि होकर कि इसमें भी कोई कल्याण है, जब कल्याण है तो व्यर्थ चलेगा नहीं, बुद्धि हिलेगी नहीं हमारी, एकाग्र हो जाएगी। ये दृश्य में भी कोई कल्याण समाया है। हर तूफान को जब तोहफा समझने लगते, ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती है, तो उसके बाद हिलने वाली बात ही नहीं आती है। तो निश्चय बुद्धि जितना होते हैं उतनी प्रीत बुद्धि सहज हो जाती है, बाबा के साथ हमारी प्रीत। और योग के लिए, एकाग्रता के लिए प्रीत बहुत जरूरी है। बिना प्रीत के योग लग नहीं सकता है। तो इसीलिए बुद्धि के लिए ये तीन बातें, बुद्धि कंस्ट्रक्टिव हो, निश्चय बुद्धि हो और प्रीत बुद्धि हो, तब बुद्धि की एकाग्रता हासिल होती है। चौथी है भावनात्मक एकाग्रता। भावनात्मक एकाग्रता में जैसे कहा, भावनाओं में आनंद की फीलिंग, योग में जब बैठो आत्मा है ही सत चित आनंद स्वरूप, जब बुद्धि को फुल स्टॉप हमने लगा दिया, विराम लगा दिया, तो विराम लगते ही अब प्रीत बुद्धि जब हम बनते जा रहे, बाबा के प्रति हमारी प्रीत जागृत हुई, तो आनंद की फीलिंग। इसलिए बाबा कहे जब योग में बैठो तो आनंद का अनुभव करना चाहिए। जितना हमारे अंदर आनंद होगा, खुशी होगी, जितनी देर भी आप बैठ जाओ योग में, उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आनंद ही नहीं है तो नींद आना स्वाभाविक है। योग में बैठते ही क्या होगा, आ जाएगा, आनंद नहीं, खुशी नहीं है। तो भावनात्मक एकाग्रता को लाने के लिए, साधने के लिए, आनंद हो, खुशी हो, किसके साथ हम मिलन मना रहे हैं, ये वो समय है हमारे जीवन का, जो अनमोल समय, परमात्मा मिलन का समय है। इतनी अंदर खुशी हो, बाबा से मिलन मनाए, सुप्रीम अथॉरिटी के साथ हमारा अपॉइंटमेंट है, ये मिलने का वक्त है। बाबा ने विशेष हमें ये समय दिया है, ज्ञान सरोवर बाबा ले आए हैं ये मिलन मनाने के लिए। तो जितनी अंदर खुशी होगी, आनंद की फीलिंग्स होंगी, तो उस मिलन में प्रेम जागृत होगा बाबा के प्रति, और उस प्रेम के साथ साथ अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे। भावनात्मक एकाग्रता के लिए ये तीन फीलिंग्स बहुत जरूरी है, आनंद, प्रेम और सुख। ये जब फीलिंग्स आ जाए उसके बाद आप देखो आपका आपके योग की क्वालिटी क्या होगी। और जितनी देर आप बैठना चाहो उसका सुख का रस, प्रेम का रस, आनंद का रस अंदर जैसे आत्मा में भरता जाएगा और मन लगा रहेगा। जैसे बाबा कई बार आशुक माशुक की बात करते हैं मुरली के अंदर, पूरी मुरली, अव्यक्त मुरली हमने पिछले महीने में एक सुनी आशुक माशुक की। उसमें बाबा ने यही कहा कि वो ऐसे खो जाते हैं जो और कुछ नहीं दिखाई देता है उनको, है ना। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक आशिक अपने माशुक से मिलने जाता है और दरवाजा खटकाता है। अंदर से आवाज आई, कौन? तो इस आशिक ने कहा, मैं हूं। तो कोई आवाज नहीं आई, न दरवाजा खुला। आशिक घूम-घाम करके थोड़ी देर के बाद फिर आ गया, इतना अंदर उसको तड़प थी मिलने की। फिर आ गया, फिर दरवाजा खटकाया, कौन? अंदर से आवाज आया, उसने कहा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। फिर कोई आवाज नहीं आई, शांत हो गया वो आशिक। क्या करता, फिर घूम-घाम करके कुछ समय के बाद फिर आ गया, फिर दरवाजा ठोका, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, बस तू ही तू है, मैं हूं ही नहीं। जब तक मैं और तू, मैंपन, इसीलिए बाबा कहते जब तक मैं हूं तो बाबा से कनेक्शन ही नहीं हो सकता है। मैंपन को समाप्त कर दिया तो बाबा ही बाबा है और कुछ है ही नहीं। ये है वो प्रीत, वो प्रेम का रस। जहां मैं हूं ही नहीं, मैं समाप्त हो गया, ये है एक व्रता। अगर मैं हूं, मैं और बाबा, तो बीच में माया के आने की गैप है बहुत बड़ी, और वो मन को कहां कहां भटका करके ले जाएगा। एकाग्रता को साध नहीं सकेंगे, एक व्रता बन नहीं सकेंगे, उसका सुख का अनुभव कर नहीं पाएंगे। लेकिन उस मैंपन को मैंने जब समाप्त किया, इसीलिए तो मीराबाई की जो प्रीत थी ईश्वर के साथ, कहा, जहां देखो तू ही तू है। यही तो भाव है, यही भावनात्मक एकाग्रता। जब ये भाव अंदर जागृत हो जाए, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, बस बाबा ही बाबा दिखाई दे बाबा। इसीलिए गीत भी हमें सिखाता है, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, ये जैसे गीत गाना शुरू कर दिया, इतना खुशी से, उमंग से, उत्साह से उसको गाना चालू कर दिया कि आप देखो कैसी वो प्रीत का रस, वो प्रेम का रस, खुशी का रस, आनंद का रस, अति इंद्रिय सुख का रस अंदर में भरने लगेगा आत्मा में। और कितना समय व्यतीत हो गया ये पता ही नहीं चलता है। ये है भावनात्मक एकाग्रता। योग में ये सारी एकाग्रता जरूरी है। जब इन सबका अलाइनमेंट होने लगता है तब स्मृतियात्मक एकाग्रता, अर्थात स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप, जो बाबा बार बार हम बच्चों को कहते, बच्चे स्मृति स्वरूप हो जाओ, निरंतर वह स्मृति बनने लगे। लास्ट में इसीलिए अर्जुन को भी कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लभ, अब मैं स्मृति स्वरूप हो गया, अब मैं स्मृति स्वरूप हो गया। तब तक 18 अध्याय तक उसका मन विचलित रहा, कितनी बातों में जाता रहा, लेकिन जैसे ही स्मृति स्वरूप हो गया, कॉन्शियसनेस एकदम स्थिर हो जाएगी। तो इसीलिए एकाग्रता माना ये 5 प्रकार की एकाग्रता, जब ये हार्मनी में आ जाए, अर्थात एकाग्रता आ गई। लेकिन ये एकाग्रता लाने के लिए एकांत बहुत जरूरी है। दुनिया में लोगों ने एकांत का अभ्यास करने के लिए पहाड़ों पर गए, गुफाओं में गए, एकांत के लिए। योगी कहां जाकर के मेडिटेशन करते हुए दिखाया है? पहाड़ों में या गुफाओं में? यही तो दिखा है ना। क्या एकांत पहाड़ों पर ही होती है? अगर अंदर एकांत एकाग्रता नहीं है तो कितने भी पहाड़ों पर चले जाए, हिमालय में चले जाए, तो भी प्राप्ति का अनुभव नहीं करता है। तो पहले एकाग्रता चाहिए और उस एकाग्रता के लिए फिर एकांत, एकांत फिर कहीं भी रह करके हासिल कर सकता है। और इसीलिए बाबा ने एकांत के लिए हम बच्चों को 2 अभ्यास बताए। और वो एकांत के लिए 2 अभ्यास कौन से हैं? बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी सदा सुखी। आज पहाड़ों पर गुफाओं में भी जाकर के क्या किया? अंदर ही जाने का प्रयत्न किया ना, और उसके लिए सोचा बाह्य दुनिया को हम देखे ही नहीं, गुफाओं में चले गए कि बाह्य दुनिया को देखे ही नहीं, हम भीतर चले जाए ताकि उस एकांत का अनुभव कर सके। तो बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चे कहीं भी रहो, तुम गृहस्थ में रहो, अंतर्मुखी बन जाओ, ये अभ्यास को बढ़ाओ। अंतर्मुखी माना, दादी गुलजार हमेशा बताते, अंतर्मुखता क्यों कहा? क्योंकि अधिकतर हमारी इंद्रियां मुख पर है, देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने की, ये सारी इंद्रियां तो मुख पर है ना। इन सब को अंदर कर लो, भीतर ले जाओ। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी। जब उसको अंदर ले जाते हैं, बाह्य दुनिया से कट ऑफ करते हैं, वो एकांत, और उस एकांत में जब एकाग्रता है, 5 प्रकार की हार्मोनाइज्ड है, तो सहज ही एक बाबा के अंत में समा सकते हैं। एकांत, एक बाबा के अंत में हम सहज समा सकते, लवलीन सहज हो सकते हैं। और दूसरा अभ्यास जो बाबा ने हम बच्चों को बताया, वो दूसरा अभ्यास है साइलेंस पावर। बच्चे साइलेंस में चले जाओ, मन को शांति की गहराई में समा लो, इतनी शांति अंदर हो। जितनी साइलेंस पावर अंदर होगी, संकल्पों के अंदर इतनी पावर भर जाएगी। जो कोई भी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के लिए तो एकांत में गए। एकांत माना जहां साइलेंस, हिमालय पर गए। क्यों? साइलेंस, उस आवाज कोलाहल से दूर। तो साइलेंस में चले गए, तब जो साधना करते हैं उस साधना को साध सकते हैं, अर्थात उसकी सिद्धि का अनुभव कर सकते हैं। अगर एकांत नहीं है तो उस सिद्धि को भी जीवन के अंदर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइलेंस ही नहीं है। विचारों के अंदर इतना भागा दौड़ी चल रही है। शहरों से आप यहां क्यों आए? भट्टी करने के लिए? एकांत के लिए ना? वहां इतना बाह्य मुक्तता है, अंतर्मुक्तता है ही नहीं। लेकिन अगर यहां आकर के भी ग्रुप में बातचीत 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 ही चलती रहेगी तो क्या होगा? यहां आने के बाद भी जो साधना, जो सिद्धि का अनुभव करना चाहते हैं, उसको कर सकेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो बार बार आपको कहा जाता होगा, सारा दिन मौन में जितना रह सको, साइलेंस में जितना रह सको, क्योंकि जितना मन उस शांति का रस अंदर लेगा, उस एकांत में समाना सहज हो जाएगा। अगर अंदर एकांत ही नहीं है, वो साइलेंस नहीं है, तो यहां आने के बाद भी जो प्राप्ति का अनुभव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। समय ने, ड्रामा ने लॉकडाउन भी क्यों किया था? ताकि हम बच्चे कुछ पुरुषार्थ के लिए समय निकाल सके। इसीलिए ना कि महसूस किया ना कि भाई भागा दौड़ी वाली इतनी जिंदगी हो गई थी, जो अपने लिए समय ही नहीं मिलता था, तो ये लॉकडाउन ने ड्रामा अनुसार समय दिया। लेकिन आज अगर पीछे मुड़ करके देखे कि हमने उस समय को अपने लिए कितना यूज किया, अपनी उन्नति के लिए कितना यूज किया, नहीं कर पाए कई लोग। क्यों? क्योंकि फोन के द्वारा, फोन ऐसी चीज हो गई आज हर एक के हाथ में आ गया है, और हर एक लगा रहता है सारा दिन, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, सब कुछ उसी के ऊपर आ गया, तो उसी पर लगा। तो हमने उस एकांत का अनुभव नहीं किया। लॉकडाउन समय ने दिया, ड्रामा ने दिया हमको कि चलो तुम्हें दिया, आज तक तुम्हारी शिकायत थी कि हमें अपने लिए समय नहीं मिला, तो ये लो समय। लेकिन अगर फिर भी हमने अपने लिए समय नहीं निकाला, तो समय कहेगा अब मेरे पास भी समय नहीं है। मैंने तुम्हें इतनी अपॉर्चुनिटी दिया, इतने अवसर दिए, ज्ञान सरोवर तक भी लेके गया कि तुम उस एकांत का अनुभव करो, लेकिन फिर भी अगर नहीं किया, बाह्यता में लगे रहे। इसलिए बाबा कई बार कहते, बाह्य मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। अगर यहां आने के बाद भी उस अंतर्मुखता का, साइलेंस का अनुभव नहीं किया, तो तो समय क्या कहेगा फिर? सॉरी। इसलिए बाबा कई बार कहते, समय को शिक्षक नहीं बनाना। समय ने जितने भी अवसर दिए, उस अवसर को हम सदुपयोग कर ले, उसको प्राप्त कर ले, नहीं तो ये समय भी कहेगा, अब आगे समय मैं नहीं दे सकता। अब समय को शिक्षक बनाया तो मार्क्स चला जाएगा किसमें? समय को चला जाएगा, हमारे खाते में जमा नहीं होगा। इसीलिए एकांत के लिए अंतर्मुखता और साइलेंस, उसका लाभ लो। अंतर्मुखी जब कहते हैं तो अंतर्मुखता माना एक तो अपनी इंद्रियों को भीतर ले जाना, गुफा में अंदर ले जाओ। और सबसे अच्छी गुफा कौन सी है हमारे लिए? ये ब्रुकुटी की गुफा, ये गुफा बहुत अच्छी है। कई बार आपने ये कमेंट्री में शब्द सुना होगा, है ना, कि ब्रुकुटी की गुफा में बैठ जाओ, आत्मस्थिति में बैठ जाओ। तो ये ब्रुकुटी गुफा जो है, जब अंतर्मुखी होकर के इस ब्रुकुटी की गुफा में बैठ जाते हैं, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो ये हमें एकांत का बहुत सुंदर अनुभव कराएगा। तो अंतर्मुखता जब भी बाबा कहते हैं तो एक तो गुफा, दूसरा बाबा कहते अंडरग्राउंड। अंतर्मुखी होना माना अंडरग्राउंड हो जाना। कोई भी साइंटिस्ट जब रिसर्च करता है ना, वो अंडरग्राउंड चला जाता है। अगर अंडरग्राउंड नहीं जाता है तो रिसर्च नहीं कर सकता है। अगर बाह्य मुक्ता में रहा, बाह्य दुनिया में रहा, तो रिसर्च नहीं हो सकती है। इसीलिए उसको अंडरग्राउंड जाना ही पड़ता है। तो अंतर्मुखता माना अंडरग्राउंड चले जाना। कितने दिनों तक वो अंडरग्राउंड रहता है और एक ही विषय के ऊपर फोकस्ड रहता है, तब वो कुछ न कुछ हासिल कर सकता है, सिद्धि का अनुभव कर सकता है। इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते कि योग की सिद्धि का अनुभव करने के लिए हमें भी कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड जाना ही पड़ेगा। तो 3 दिन यहां जो मिले, 3 दिन अंडरग्राउंड कितना रहे, या फोन से फिर भी वहां कांटेक्ट करते रहे जहां जहां से आए। अरे मधुबन आए हैं, ज्ञान सरोवर आए हैं, खुशी है। आप पहले दिन ही हम पहुंच गए आराम से, अब 3 दिन हमारा मोबाइल बंद रहेगा। ऐसे कितनों ने किया कि अब मोबाइल हमारा चालू नहीं होगा, 3 दिन भट्टी के बाद ही चालू करेंगे, तब तक स्विच ऑफ किया। और वही जब अंडरग्राउंड हो जाते हैं, ऐसी साइलेंस में चले जाते, तभी सिद्धि का अनुभव कर सकते हैं। और तीसरा बाबा हमेशा कहते हैं, अंतर्मुखता माना जैसे समुद्र के तले में चले जाना। बाबा की एक मुरली याद आती है, समुद्र के तले में चले जाना। जैसे दुनिया में तैरक होते हैं ना, एक है नदी में तैरने वाले, एक है तालाब में तैरने वाले, एक स्विमिंग पूल में तैरने वाले, और एक होते समुद्र में तैरने वाले। जो समुद्र के तैरक है ना, उनको स्विमिंग पूल या वो तालाब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन समुद्र में तैरने वाले भी 2 प्रकार के होते हैं। एक है जो सर्फिंग करने वाले होते, लहरों से टकराने वाले, लहरों के ऊपर सर्फिंग करते उसको कहते हैं, लहरों से टकराते रहते हैं, उसी में आनंद आता है। और दूसरे प्रकार के जो तैरक होते हैं वो एक नाव में बहुत दूर जाते हैं और फिर डाइव मारते हैं, और जब डाइव मारते हैं तो एक दूसरी दुनिया में जाते हैं। एक दूसरी दुनिया में जैसे ही चले गए उसको एक्सप्लोर करने लगते हैं। समुद्र के भीतर भी ऐसी एक दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया है, उसको एक्सप्लोर करने लगते हैं। और उसमें कितना समय निकल जाता है पता भी नहीं चलता, टाइम का एहसास नहीं होता है जब उस दुनिया को एक्सप्लोर करने नीचे डाइव कर लेते हैं। ऊपर वाले जब सिग्नल देते हैं, भाई इतना घंटा हो गया अब चलो ऊपर आ जाओ, टाइम हो गया घर जाने का, तब उनको एहसास होता है इतना समय में नीचे रहा। ठीक इसी तरह अंतर्मुखता माना एक दूसरी दुनिया में डाइव मारना, चाहे सूक्ष्म वतन की दुनिया में डाइव मारो, चाहे मूल वतन की दुनिया में डाइव मारो, और उस दुनिया में ऐसे खो जाओ बाबा के संग संग, जो समय का भी एहसास न, उसको कहते एकांत। ये एकांत है। तो या तो गुफा में चले जाओ, या तो अंडरग्राउंड चले जाओ, या तो एक दूसरी दुनिया में डाइव मार लो। ये एकांत का अनुभव यहीं कर सकते हैं। वहां जाने के बाद अगर अभ्यास होगा यहां, तो वहां जाने के बाद भी सहज कर सकेंगे, है ना? तो इसीलिए चले हम भी और उस एक व्रता या एक नामी में, तभी हम अपने उस माशुक को बहुत प्यार से याद कर सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, उस एकाग्रता को हासिल करते हैं। पांचों प्रकार की एकाग्रता, उस योगी का चित्र अपने विजन में इस तरह से ले आओ कि वो मेरा ही चित्र है और मैं ही उस योग अभ्यास के लिए। शारीरिक हिलना डोलना भी बताता है कि अंदर मन कितना हिल डोल रहा है, है ना? नहीं तो शारीरिक हिलना डोलना, जब कोई व्यक्ति जैसे किसी व्यक्ति की याद में खो जाता है, कोई अपने प्रिय व्यक्ति की याद में खो जाता है, बैठा है ऐसे देखता रहेगा आकाश की तरफ और खो गया, हाथ ऐसे कैसे रहते हैं, जब कोई आकर के ऐसे ऐसे करता है और ध्यान तोड़ता है, उसके बाद लगता है कितनी सुन्न हो गया जैसे, फिर ऐसे ऐसे माना वो सुनता भी उस समय पता ही नहीं चली। ये है एकाग्रता शारीरिक। अगर हम हिलते डोलते रहते, बार बार हिलते डोलते रहते हैं, तो क्या होगा? इसको एकाग्रता कहेंगे कि मन उसका एकाग्र है, वो जो रस लेना चाहिए वो रस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो इसीलिए जो पोजीशन आपको बहुत अच्छी कंफर्टेबल महसूस हो, जिसमें आपकी शारीरिक हिलना क्रिया कम से कम ना के बराबर हो जाए, उस अवस्था में हम बैठ जाए, है ना? कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को बार बार खांसी आती रहती है। अरे भाई, आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आप आजू बाजू वाले का माइंड डिस्टर्ब ना करो, या तो कुछ चीज मुंह में रख लो ताकि खांसी ना आए आपको। लेकिन अगर मेरा योग नहीं लग रहा है तो मैं उठ जाऊं, 10 लोगों को डिस्टर्ब करना खांसते हुए, ये तो क्या कहेंगे, जितनों का योग डिस्टर्ब हुआ तो उसका बोझ तो कहीं ना कहीं चलेगा या नहीं चढ़ेगा। तो इसीलिए आप समझते हैं कि भई आपको बहुत खांसी आ रही है, उठ करके जाकर पानी पी लो, फिर शांति से आकर के बैठ जाओ, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो शारीरिक एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता, भावनात्मक एकाग्रता और स्मृतियात्मक एकाग्रता। ठीक है, चलते हैं। बाह्य सभी बातों से स्वयं को समेट लो, और अंतर्मुखता की गुफा में स्वयं को देखो। मैं अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज प्रकाश मणि धीरे धीरे मन बुद्धि को ले चलते हैं अनंत की ओर, परम धाम की ओर। मन बुद्धि के अंतर्वाहन द्वारा चलते हैं अपने दिव्य लोक में, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है, और मैं आत्मा अशरीरी हूं। उस दिव्य लोक में अपने पिता परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। मेरे पिता परमात्मा अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप उल्टे वृक्ष के बीज स्वरूप है। और मैं आत्मा बीज रूप बाबा के सानिध्य में हूं। मेरे बाबा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान बाबा से सर्वशक्ति शक्तियों की किरणें स्वयं में समाती जा रही हूं। मेरे बाबा प्रेम के सागर है, निर्मल प्रेम, असीम प्रेम प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, बाबा संग ऐसी न्यारी निराली प्रीत है जो उस प्रेम में समा जाती हूं, खो जाती हूं। प्रेम के सागर बाबा अपने असीम प्रेम में मुझे समा रहे हैं। मैं बाबा के प्यार में लवलीन हो जाती हूं। कितना सुंदर अनोखा अनुभव है ये। प्रभु प्रीत का मेरे पिता परमात्मा आनंद के सागर है। वो आनंद की लहरें मन खुशियों से भर गया है। कितना सुंदर मधुर मिलन है ये। जहां मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई, चारों ओर आनंद ही आनंद है। मन इस दिव्य आनंद में रोमांचित सुंदर अनुभव है ये। कितना अलौकिक सुख समाया हुआ है जो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करा रहा है। जैसे बाबा के संग इस अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही हूं, खुशी आनंद में झूल रही हूं।